ये रेडियो नेपाल है। हिंदी समाचार बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं मीनू प्रधान। आरंभ में आज के मुख्य समाचार शीर्षक। लापता छानबीन आयोग और सत्य निरूपण आयोग तथा मेल मिलाप आयोग की समयावधि को और एक वर्ष बढ़ाने का सरकार ने लिया निर्णय। देश के आर्थिक और सामाजिक रूपांतरण के लिए असंलग्न परराष्ट्र नीति के प्रतिकूल न होने के हिसाब से प्राप्त होने वाले विदेशी सहयोग स्वीकार किए जाने चाहिए। संचार मंत्री का कथन। शहीद दिवस के मौके पर किया गया विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन। और चीन में फैले कोरोना वायरस के संक्रमण से बचाव को लेकर चीन सरकार ने किया सेना परिचालन। कोरोना से अब तक 170 की हो चुकी है मौत। अब समाचार विस्तार से। सरकार ने लापता छानबीन आयोग और सत्य निरूपण तथा मेल मिलाप आयोग की कार्यवधि को एक साल के लिए बढ़ा दिया है। मंत्रिपरिषद की मार्च 13 को हुई बैठक के निर्णयों को साझा करने के लिए आज सिंहदरबार में बुलाए गए प्रेस कॉन्फ्रेंस में सरकार के प्रवक्ता एवं संचार तथा सूचना प्रविधि मंत्री गोकुल प्रसाद बासकुटा ने ये बात बताई। मंत्री बासकुटा ने ये भी बताया कि मंत्रिपरिषद की बैठक ने द्वंद्व से क्षतिग्रस्त नक्शों और भूमि संबंधी कागजात पुनर्स्थापन के लिए संघवा सभा के चैनपुर में अस्थायी रूप में विशेष नापी कार्यालय स्थापना करने और अछाम में मौजूद कार्यालय के ये काम पूरे हो चुकने के कारण कार्यालय को खारिज करने का निर्णय लिया है। इसके अलावा अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्र के व्यवस्थापन के लिए राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण कोष की कार्यावधि को एक साल बढ़ाने लगायत कई अन्य निर्णय बैठक ने किए हैं। संचार तथा सूचना प्रविधि मंत्री गोकुल प्रसाद बासकुटा ने कहा कि देश के आर्थिक व सामाजिक रूपांतरण के लिए असंलग्न परराष्ट्र नीति के विपरीत न होने के हिसाब से प्राप्त होने वाले विदेशी सहयोग स्वीकार किए जाने चाहिए। आज सिंहदरबार में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान पत्रकार के एक सवाल पर उन्होंने बताया कि सरकार ने सन 2030 तक दीर्घ विकास के लक्ष्यों को पूरा करने की अपनी प्रतिबद्धता के मद्देनजर एमसीसी और बीआरआई जैसे विदेशी सहयोगों को स्वीकार किया है। आगे उन्होंने बताया कि दीर्घ विकास के लिए सिर्फ आंतरिक स्रोत अपर्याप्त होंगे। आज ही शाम को विराटनगर विमानस्थल पर संचार कर्मियों के साथ बातचीत के दौरान उन्होंने ये भी कहा कि एमसीसी का विरोध करना विकास प्रक्रिया को लेकर अनावश्यक सनसनी पैदा करने के सिवाय और कुछ नहीं है। उन्होंने एमसीसी से मिलने वाले सहयोग को स्वीकार करने की बात पर जोर दिया। एक सवाल पर उन्होंने बताया कि चीन में फैले कोरोना वायरस से अब तक वहां मौजूद कोई भी नेपाली विद्यार्थी संक्रमित नहीं हुआ है। इस बात का जिक्र करते हुए कि 91-92 नेपाली विद्यार्थी चीन में हैं और उन्हें लेकर नेपाल और चीन सरकार के बीच संवाद जारी है। उन्होंने दावा किया कि वे सभी सुरक्षित हैं। प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली के साथ नेपाल के औपचारिक दौरे पर रहे लग्जमबर्ग के विदेश मंत्री जीन एसेलबर्न ने मुलाकात की। आज प्रधानमंत्री निवास बालवाटार में हुई मुलाकात में प्रधानमंत्री ओली ने संविधान निर्माण के बाद नेपाल में राजनीतिक स्थायित्व मौजूद होने का जिक्र करते हुए यहां निवेश करने का उनसे आग्रह किया। जवाब में लग्जमबर्ग के विदेश मंत्री एसेलबर्न ने कहा कि साझा हितों के विषय में सहकार्य के लिए हम तैयार हैं। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा की काठमांडू में जारी केंद्रीय कमेटी की बैठक में प्रस्तुत राजनीतिक प्रतिवेदन, सांगठनिक प्रतिवेदन और विधान संशोधन प्रस्ताव के ऊपर आज से समूहगत विचार विमर्श शुरू हुआ है। बैठक में पार्टी केंद्रीय सदस्यों को विभाजित कर बनाए गए विभिन्न 15 समूहों में पार्टी के दोनों अध्यक्षों केपी शर्मा ओली और पुष्प कमल दाहाल प्रचंड के राजनीतिक प्रतिवेदन, महासचिव विष्णु प्रसाद पौड़ेल के सांगठनिक प्रतिवेदन और विधान संशोधन प्रस्ताव के ऊपर विचार विमर्श जारी रहा। कल और परसों समूह के नेतागण अपने अपने समूह की ओर से लिखित प्रतिवेदन प्रस्तुत करेंगे और पार्टी के केंद्रीय निकाय के अध्यक्ष अपनी अपनी धारणा रखेंगे। प्रजातंत्र स्थापना के लिए अपने जीवन का बलिदान करने वाले शहीदों की याद में देश भर विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन कर शहीद दिवस मनाया गया। शहीद दिवस के अवसर पर राष्ट्रपति विद्या देवी भंडारी ने आज एक संदेश जारी किया है। संदेश में कहा गया है कि शहीदों के सपनों को साकार करने के लिए सभी को हौसला मिले, ये मेरी कामना है। शहीद दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने काठमांडू के लैनचोर स्थित शहीद स्मृति पार्क पहुंचकर शहीदों के प्रति श्रद्धांजलि व्यक्त की। काठमांडू महानगर पालिका के प्रमुख विद्या सुंदर शाक्य के संयोजकत्व में गठित शहीद सप्ताह मूल समारोह समिति द्वारा आज काठमांडू में आयोजित कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ओली ने ज्ञात अज्ञात शहीदों के प्रति श्रद्धांजलि अर्पित की। हर साल मार्च 10 से 16 गते तक विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन कर शहीद सप्ताह मनाया जाता है। नेपाली कांग्रेस के नेता प्रकाश मान सिंह ने कहा कि प्रजातांत्रिक, लोकतांत्रिक और गणतांत्रिक आंदोलनों को सफल बनाने में शहीदों के योगदान महत्वपूर्ण है। शहीद दिवस के मौके पर आज तनहू की व्यास नगर पालिका द्वारा आयोजित कार्यक्रम में उन्होंने ये बात कही थी। समाचार रेडियो नेपाल से प्रसारित किए जा रहे हैं समय व्यापारिक विश्राम का।
हजुर दर्शन
भाग्यवानी बाबू राम्ररी आइपुग्नु भयो नि।
हजुर राम्ररी पुगे। ऊ चाहिँ मेरो कलेजको बेस्ट फ्रेन्ड।
नमस्ते बाबुजू।
नमस्ते, आउनु न भित्रै।
हुन्छ बाबुजू।
अनि दादा त अफिस गइसक्नु भयो होला है?
उहाँ त बिहानै हो। हुन्छ, तपाईँहरू फ्रेस हुँदै गर्नु न, म खाना तयार गर्दै गर्छु है।
हस् हस् बाबुजू।
ओए वाइफाई होला नि, पासवर्ड माग्न।
है त पनि एनटिसीको सस्तो डे प्याक छँदैछ नि।
ए हो र,
एनटिसीको डे प्याक लिन *1415# डायल गर्न।
नेपाल टेलिकम, राष्ट्रको संचार।
अब बाकी समाचार। सार्वजनिक लेखा समिति ने नेपाल ट्रस्ट के नाम पर मौजूद गोकर्ण रिसोर्ट दरबार मार्ग की जमीन आदि सरकारी संपत्ति को निजी क्षेत्रों को किराए पर देने के सरकार निर्णय पर जिज्ञासा दिखाई है। लेखा समिति ने आज प्रधानमंत्री कार्यालय और नेपाल ट्रस्ट कार्यालय के अधिकारियों को बुलाकर इस विषय में विचार विमर्श किया था। समिति ने अधिकारियों को इस विषय में और अधिक जानकारी प्राप्त करने के बाद पुनः अगली बैठक में आने का निर्देश किया है। राष्ट्रीय जनता पार्टी राजपा नेपाल के अध्यक्ष मंडल के संयोजक महेन्द्र राय यादव ने कहा कि तत्काल हमारी पार्टी के सरकार में जाने की कोई संभावना नहीं है। आज रिपोर्टर्स क्लब द्वारा काठमांडू में आयोजित साक्षात्कार में अध्यक्ष मंडल के संयोजक यादव ने कहा कि सरकार में जाने के संबंध में फिलहाल पार्टी में कोई विचार विमर्श नहीं हुआ है। रूपनदेही में खुद जमा किए कबाड़ी के बोरों के जत्थे से दबकर एक ही परिवार के चार भारतीय नागरिकों की मौत हो गई है। इस हादसे में सिद्धार्थनगर नगर पालिका 6 की गल्ला मंडी पिपरहिया में रेंट में रहने वाले भारत के बिहार राज्य के बलिया स्थित तपनी गांव के 30 वर्षीय सहजाद हुसैन, उनकी पत्नी 26 वर्षीय सद्धाव खातून, 2 वर्षीय बेटी सहीना खातून और 6 वर्षीय बेटा सुल्तान रजा की हुई मौत की जानकारी जिला प्रहरी कार्यालय के इंस्पेक्टर केशव गेवाली ने दी। विद्या की देवी सरस्वती माता की पूजा आराधना के साथ बसंत पंचमी मनाई गई। बसंत पंचमी के दिन सरस्वती की पूजा करने से विद्या बुद्धि के बढ़ने का विश्वास है। आज देशभर के सरस्वती मंदिरों में पूजा आराधना के लिए श्रद्धालुओं की भीड़ लगी हुई थी। अब अंतर्राष्ट्रीय समाचार। चीन के राष्ट्रपति शी जिनफिंग ने कोरोना वायरस के प्रकोप को रोकने के मुश्किल काम में सेना को उतार दिया है। अमेरिका और जापान ने कोरोना वायरस के प्रसार का केंद्र माने जा रहे मध्य चीन के वुहान शहर से अपने नागरिकों को निकाला है। वुहान से ही चीन के सभी प्रांतों समेत दुनिया के कई देशों में यह रहस्यमय वायरस पहुंचा है। तिब्बत में भी इस वायरस ने दस्तक दे दी है। चीन में जान गंवाने वालों की संख्या बढ़कर 170 हो गई है। संक्रमित लोगों का आंकड़ा भी 6000 को पार कर गया है, जिसमें 6 विदेशी भी शामिल हैं। अब मौसम। अगले 24 घंटों में काठमांडू घाटी का अधिकतम तापमान 19 से 21 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 3 से 5 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की संभावना है। पिछले 24 घंटों में काठमांडू घाटी का अधिकतम तापमान 19.6 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 4 डिग्री सेल्सियस रहा। और अब अंत में मुख्य समाचार शीर्षक एक बार फिर से। लापता छानबीन आयोग और सत्य निरूपण आयोग तथा मेल मिलाप आयोग की समयावधि को और एक वर्ष बढ़ाने का सरकार ने लिया निर्णय। देश के आर्थिक और सामाजिक रूपांतरण के लिए असमलिंग पर राजनीति के प्रतिकूल न होने के हिसाब से प्राप्त होने वाले विदेशी सहयोग स्वीकार किए जाने चाहिए, संचार मंत्री का कथन। शहीद दिवस के मौके पर किया गया विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन और चीन में फैले कोरोना वायरस के संक्रमण से बचाव को लेकर चीन सरकार ने किया सेना परिचालन। कोरोना से अब तक 170 की हो चुकी है मौत। इसी के साथ हिंदी समाचार बुलेटिन से कल तक के लिए आगे दीजिए। सुनते रहिए रेडियो नेपाल। शुभ रात्रि।